हाय इन्वेस्टर्स, वेलकम टू SOIC। तो आज की इस बिजनेस एनालिसिस सीरीज में हम लोग क्या करेंगे, वील बी एनालाइजिंग सम ऑफ द सेक्टर्स विच माइट और माइट नॉट डू वेल इन 2024। माइट नॉट की क्यों बात करूँ, क्योंकि आपके साथ एक डेटा पॉइंट जरूर डिस्कस करूँगा बिगनिंग ऑफ द वीडियो में बिफोर वी डिस्कस अबाउट द सेक्टर्स। एंड व्हाट वील डू इज हम उन सेक्टर्स का पोटेंशियल टोटल एड्रेसेबल मार्केट डिस्कस करेंगे, उनमें क्या क्या प्लेयर्स इस टाइम पे क्या कर रहे हैं एंड क्यों इन सेक्टर्स के अंदर अभी इस टाइम पे ग्रोथ आ रही है, ये सारी चीज़ों का हम डिस्कशन करेंगे। तो फर्स्ट पॉइंट जो मैं आपके साथ वीडियो स्टार्ट करने से पहले बताना चाहता हूँ कि जब हम स्मॉल कैप इंडेक्स की बात करते हैं, जब हम BSE स्मॉल कैप की बात करते हैं, तो 2023 हम सबके लिए काफ़ी अच्छा ईयर रहेगा। अगर आप स्मॉल कैप मिड कैप के अराउंड अगर आप वेल पोजिशन थे तो यू वुड हैव डन फैंटास्टिकली वेल इन द मार्केट्स। बट वन थिंग टू रिमेंबर इज कि जब भी स्मॉल कैप इंडेक्स का मोर देन 40% रिटर्न रहता है कैलेंडर ईयर में, तो नेक्स्ट ईयर टिपिकली इज नॉट दैट ग्रेट फॉर द मार्केट्स। जब हम इस टाइम पे स्पेशली मिड और स्मॉल कैप्स की बात करें, तो आपके साथ यहाँ पे मैं एक बार आपको लास्ट 10-15 ईयर्स का डेटा प्रेजेंट करता हूँ। तो एक्चुअली में अगर आप 2010 से देखेंगे तो 2010 में मार्केट का रिटर्न 15% था, 2011 में -42% था स्मॉल कैप इंडेक्स का, क्योंकि 2009 में 127% के आसपास था। तो ये डेटा 2010 के बाद बहुत होल्ड करता है ट्रू। तो 40% रिटर्न मिनिमम की हम बात कर रहे हैं। 2012 में 33% था, फिर उसके नेक्स्ट ईयर -7%, फिर 2014 में 70% रिटर्न आया, फिर 6% आया, फिर 1% आया, फिर 59% ऊपर गई मार्केट 2017 के अंदर, देन उसके नेक्स्ट ईयर -23%, -6%, फिर 2020 में कोविड के बाद रिकवरी बाद 32%, पर 2021 में आप देखेंगे अगेन 62% रिटर्न, बट उसके नेक्स्ट ईयर -1.8। 2023 में 47.52% रिटर्न बना और अभी तक 2024 में 3.86% रिटर्न है। सो वन थिंग टू बी केयरफुल ऑफ इज कि 2024 में मेक इट अ प्लेज कि एट द स्टार्ट ऑफ द ईयर हम अपने पोर्टफोलियो का एक वैल्यूएशन टेम्परेचर चेक करेंगे। और वैल्यूएशन टेम्परेचर चेक में क्या क्या करेंगे कि जितनी भी हॉट थीम्स हैं, चाहे वो रेलवे हो, चाहे वो फोर्जिंग कंपनीज हो, चाहे वो डिफेंस कंपनीज हो, चाहे वो पावर कंपनीज हो, चाहे वो रिन्यूएबल एनर्जी कंपनीज हो, इनका कितना एलोकेशन अपने अपने पोर्टफोलियो के अंदर करा हुआ है, एंड इसके अंदर जो EMS कंपनीज हैं, जो इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज में, ऐसे सेक्टर को भी इंक्लूड करेंगे। जो भी हॉट थीम्स हैं जो लास्ट 1-2 ईयर्स में जिन्होंने बहुत अच्छे से करा है, तो उनका परसेंटेज जो एलोकेशन है आपको पोर्टफोलियो का चेक करना चाहिए, बिकॉज हॉट थीम्स में मल्टीपल्स 100, 120, 130 PE के आसपास चल रहे हैं, कहीं कहीं जगह तो 200-300 PE भी चल रही है। सो दैट इज इंपॉर्टेंट कि आप अपने पोर्टफोलियो का एक हॉट थीम्स का चेक करें एट द बिगनिंग ऑफ 2024, बिकॉज स्मॉल कैप स्पेस में कैपिटल गुड कंपनीज और इन सारे सेक्टर्स ने बहुत अच्छा करा है। बट यू मस्ट रिमेंबर इज दैट वॉट हैज हैपेंड इन द पास्ट माइट नॉट रिपीट इन द फ्यूचर, तो वैल्यूएशन कम्फर्ट जरूर होना चाहिए। एंड अपने पोर्टफोलियो का एक बार स्टेज एनालिसिस भी कीजिए, कहीं ये ना हो कि बहुत सारे स्टॉक लेट स्टेज बेसिस में हो। लेट स्टेज बेसिस क्या होते हैं कि स्टॉक्स कंसोलिडेट बिफोर दे ब्रेकआउट, देन दे अगेन कंसोलिडेट एंड देन दे ब्रेकआउट। तो अगर ऐसे आपके किसी स्टॉक के अंदर 4-5 बेसिस बन चुके हैं, सो देर इज अ चांस कि वो लेट स्टेज बेस में ना हो। तो वैल्यूएशन चेक और लेट स्टेज बेसिस, आपको दो चीज़ें अपने पोर्टफोलियो में जरूर चेक करनी है। विद दिस लेट्स स्टार्ट द वीडियो फॉर द थीम्स। बट ब्रॉडर थीम क्या है कि 2023 में वी हैड फैंटास्टिक, बेसिकली एवरीवन हैड अ फैंटास्टिक ईयर। बट वो इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर इज कि जब बहुत ज़्यादा फैंटास्टिक ईयर हो जाता है तो अगला ईयर हो सकता है उतना ग्रेट ना हो, तो इसलिए आपको एक्सपेक्टेशंस को थोड़ा सा मॉडरेट डाउन कर लेना चाहिए। सो जस्ट बिफोर आई स्टार्ट, कमेंट सेक्शन में आप लोग ये जरूर नीचे लिखिए कि एक्सपेक्टेशंस आपकी राइट है, जस्ट मेंशन एक्सपेक्टेशंस आर करेक्ट, ताकि आप एटलीस्ट ये एक्सपेरिमेंट तो करें ही करें। विद दिस लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट थीम फॉर 2024। सो जब हम फर्स्ट सेक्टर का डिस्कशन करते हैं, सो फर्स्ट सेक्टर दैट वी डिस्कसिंग इज द गोल्ड ज्वेलरी सेक्टर। तो ज्वेलरी सेक्टर में इस टाइम पे क्या हो रहा है, अनऑर्गेनाइज टू ऑर्गेनाइज शिफ्ट काफ़ी रैपिडली हो रहा है। तो जो ऑर्गेनाइज ज्वेलर्स है, दे हैव ग्रोन एट अ CAGR ऑफ 20% बिटवीन FY17 to FY23। तो सिर्फ टाइटन में ही ग्रोथ नहीं आ रही, जो बाकी टाइटन के छोटे प्लेयर्स हैं, चाहे वो कल्याण हो, सेनको, उनमें भी ग्रोथ आ रही है इस टाइम पे। कंगा माइल भी एक रीजनल ज्वेलर है, वहाँ पे भी ग्रोथ आ रही है। बट द आइडिया इज कि हम लोग उन सेक्टर्स की तरफ देख रहे हैं जहाँ पे ग्रोथ रेट्स फास्टर हैं। प्लेयर्स एग्नोस्टिकली आप सबको खुद ही सोचने पड़ेंगे, बट इस टाइम पर अगर हम इस सेक्टर में देखते हैं, तो इंडिया इज वर्ल्ड सेकेंड लार्जेस्ट कंज्यूमर ऑफ गोल्ड। एंड गोल्ड का अगर आप कंजम्पशन देखते हैं, तो रूरल इंडिया के अंदर 60% ओनरशिप है गोल्ड की, वेयरएज अर्बन इंडिया में 40% के आसपास ओनरशिप है। इस सेक्टर में क्या हुआ है कि ये सेक्टर ऑलमोस्ट 90% अनऑर्गेनाइज होता था 2001 में, जो 2006 में 58% अनऑर्गेनाइज है। ऑर्गेनाइज प्लेयर्स का मार्केट शेयर 15% से 38% हो गया ओवर लास्ट 21 ईयर्स, एंड इट इज़ एक्सपेक्टेड कि ओवर नेक्स्ट 3-4 ईयर्स ऑर्गेनाइज प्लेयर्स का मार्केट शेयर ऑलमोस्ट 10-15% के ऑड से बढ़ना चाहिए। इस क्वार्टर के लिए हम अगर हम अपडेट पे भी देखते हैं, तो इस क्वार्टरली अपडेट के अंदर क्या हुआ है, सो कंपनीज लाइक टाइटन, हमने आज से 2 साल पहले इस चैनल पर एनालिसिस करा था, वो भी देख सकते हैं। तो टाइटन हैज़ ग्रोन इट्स ज्वेलरी बिजनेस बाय 23%। अगर आप सेनको गोल्ड का देखते हैं तो सेनको गोल्ड का ऑलमोस्ट 24% के रेट ऑफ पेस पे ज्वेलरी बिजनेस ग्रो करा है, कल्याण का ऑलमोस्ट 40% पे ग्रो करा है, एंड थंगा माइल के अभी रिजल्ट्स नहीं आए। बट द आइडिया टू नोटिस इज कि सेक्टर में टेलविंड्स है। हो सकता है कि प्लेयर्स सब इंडिपेंडेंटली चूज करें, बट अगर सेक्टर के अंदर टेलविंड्स कर रही है और टोटल एड्रेसेबल मार्केट अभी भी मल्टीपल ईयर्स ऑफ ग्रोथ बता रहे हैं, सो देन दिस इज वन ऑफ द सेक्टर्स जहाँ पे अनऑर्गेनाइज टू ऑर्गेनाइज का जो शिफ्ट है दिस ट्रेंड कैन एक्सेलरेट। तो यहाँ पे रीजनेबली वैल्यूड कंपनीज भी कुछ कुछ होंगी। तो अगर आप पेग रेशियो लगा के देखेंगे टैटिस आप कितनी पी दे रहे हैं वर्सेज द ग्रोथ डैट यू गेटिंग, देन यू विल बी एबल टू गेट टू सम ऑफ दोज रीजनेबली वैल्यूड कंपनीज एज वेल। सो दिस इज हाउ द सेक्टर लुक्स फॉर। सो दिस इज द फर्स्ट सेक्टर फॉर 2024। जब हम सेकेंड सेक्टर की बात करते हैं तो सेकेंड सेक्टर के अंदर जब हम डिस्कशन कर रहे हैं तो हम लोग ऐसे सेक्टर की बात कर रहे हैं जहाँ पे इस टाइम पे थोड़ी सी हेडविंड्स हैं। पर ये किस टाइप की हेडविंड्स हैं? दीज हेडविंड्स आर बिकॉज ऑफ कॉन्ट्रैक्शन ऑफ नेट इंटरेस्ट मार्जिन्स। तो इस सेक्टर का क्या नाम है? दिस इज द बैंकिंग एंड फाइनेंस सेक्टर। एंड बैंकिंग एंड फाइनेंस सेक्टर इज वन ऑफ दो सेक्टर्स जिसने इंडिया में हिस्टोरिकली बहुत वेल्थ क्रिएशन करी है। तो इस सेक्टर में इस टाइम पे क्या चल रहा है कि काफ़ी सारे जो लार्ज कैप स्टॉक्स हैं दे हैव गॉन इन अ साइडवेज ट्रेंड फॉर लास्ट 2 to 3 years। बिकॉज एक तो पहली चीज़ पूरे सेक्टर के अंदर ग्रोथ रिवाइव हो गई है, तो जो छोटे वाले PSU बैंक्स हैं उनके भी NPA सॉल्व हो गए हैं, छोटे वाले जो बाकी बैंक्स हैं उनके भी NPA सॉल्व हो गए, मेरा जो लार्ज कैप बैंक्स का प्रीमियम था डैट हैज़ गॉन अवे। तो लाइक्स ऑफ HDFC बैंक, लाइक्स ऑफ एक्सिस बैंक, लाइक्स ऑफ ICICI बैंक, द लाइक्स ऑफ कोटक बैंक, इवन टू अ सर्टेन एक्सटेंट टू द लाइक्स ऑफ बजाज फाइनेंस एंड NBFC स्पेस, अ लॉट ऑफ दीज स्टॉक्स हैव बीन कंसोलिडेटिंग फॉर अ वाइल। बजाज फाइनेंस का अगर आप क्वार्टली अगर रिसेंटली रन रेट देखते हैं तो AUM में लिटरली 35% ग्रोथ आई है, एंड लास्ट 2 years से स्टॉक का बेस फॉर्मेशन हो रहा है। बेसिकली इट इंडिकेट्स कि नॉट स्ट्रॉन्ग बाइंग इंटरेस्ट, नॉट स्ट्रॉन्ग सेलिंग इंटरेस्ट। एंड उसके साथ साथ अगर हम सेक्टोरल वैल्यूएशन देखते हैं तो पी रेशियो सेक्टर की डी रेट होते होते ऑलमोस्ट 16 times के आसपास आ गई है, विच इज़ मच लेसर देन वॉट इट वॉज 2 years ago, 1 year ago, इवन 3 years ago, 4 years ago, 5 years ago। एंड अगर आप प्राइस टू बुक देखते हैं तो प्राइस टू बुक भी अभी 2.8 times के आसपास आ गए, जो ऑन एन एवरेज 3x के आसपास रहता है सेक्टर का। विनर्स अगर आप यहाँ पे देखते हैं तो बैंक्स अगर आप पूरा क्लोजली देखते हैं तो बैंक्स और फार्मा का एक साइकिल रहता है कि कंसिडरिंग द सुपीरियर अर्निंग ट्रेंड एंड बेटर वैल्यूएशन फॉर लेंडर एंड फार्मा फर्म्स, तो वॉट इज हैपन इज दैट कि लास्ट ऐसी 3 cycles आई हैं और 4 to 4.5 years where both banks and pharmaceutical sector has underperformed, and this is a third time it is happening. So this is one of these sectors to watch out for 2024. Reason being, क्योंकि इन companies के NIMs won't stay contracted forever, interest rates won't remain high forever. ये ज़रूर हो सकता है कि अगर इन्फ्लेशन धीरे धीरे घटती है तो इंटरेस्ट रेट्स कैन बी हायर फॉर लॉन्गर, बट ऐसा नहीं होएगा कि दे विल स्टे हायर फॉर एवर। सो दीज कंपनीज आर स्टिल एक्सपीरियंसिंग वेरी रोबस्ट एसेट क्वालिटी। अगर हम बजाज फाइनेंस का एग्जांपल है तो बजाज फाइनेंस की भी वेरी लो GNPAs हैं। HDFC बैंक का एग्जाम्पल है तो HDFC बैंक की इस क्वार्टर में का भी जो बिजनेस अपडेट था 20% प्लस डिपॉजिट ग्रोथ है, 20% प्लस एडवांसेस ग्रोथ है। एक्सिस बैंक के अंदर भी सेम है, एंड ऑल दीज बैंक्स हैव बीन रिपोर्टिंग वेरी हाई ROEs। एक्सिस बैंक का रिटर्न ऑन इक्विटी 18% के आसपास चला गया, ICICI बैंक का भी 16 to 18% के ब्रैकेट के बीच में, एंड HDFC बैंक का रिसेंटली मर्जर हुआ है। HDFC आई थिंक रिसेंटली 20-year लो वैल्यूएशन पे भी आया था अगर आप PE बैंक के ऊपर देखेंगे, तो यहाँ पे जैसे आपको स्क्रीन में मैं दिखा भी पा रहा हूँ। सो दिस इज वन ऑफ दीज सेक्टर्स की जहाँ पे लार्ज कैप बैंक्स और लार्ज कैप NBFCs इज वन ऑफ दीज सेक्टर्स टू वॉच आउट फॉर 2024, बिकॉज सिंपली बिकॉज लास्ट 2-3 years में यहाँ पे कुछ भी नहीं हुआ एंड दिस इज अ लॉन्ग बेस विच हैज़ फॉर्म। अब हम लार्ज कैप बैंक्स और NBFCs की तो बात करें, कमिंग बैक टू द अदर स्पेक्ट्रम ऑफ द मार्केट, अगर लार्ज कैप बैंक्स NBFCs अच्छा करते हैं तो सेक्टर के जो मल्टीपल्स हैं दे गेट रीरेटेड। सम ऑफ द स्मॉलर बैंक्स एंड NBFCs माइट ऑल्सो डू वेल। तो स्मॉलर बैंक्स और NBFCs में हम कहाँ देख रहे हैं, तो माइक्रो फाइनेंसियर्स का भी अभी भी एक अच्छा एक क्रेडिट साइकिल चल रहा है। अच्छा क्रेडिट साइकिल क्या चल रहा है कि माइक्रो फाइनेंसियर्स स्टिल आर एक्सपीरियंसिंग वेरी गुड एसेट क्वालिटी। माइक्रो फाइनेंस की साइकिल तब खराब होती है जब कोई एग्जॉजिनस इवेंट हो जाए। अगर कोई एग्जॉजिनस इवेंट हो सकता है तो हो सकता है 2024 में अच्छा ना करे, पर अभी तक कोई इवेंट नहीं हुआ लास्ट 1.5 years से, इवन दो लास्ट 10 years में 5-6 इवेंट्स बड़े बड़े हो चुके हैं। सो दिस इज ऑल्सो वन ऑफ दो सेक्टर्स विच सीम्स टू बी वेल पॉइज्ड। तो यहाँ पे आपको NBFCs में हमने आई थिंक आज से 3-4 साल पहले चैनल पे, इवन 3 years बैक एक अरमान फाइनेंस पे वीडियो बनाई थी, इवन रिसेंटली उस कंपनी ने भी QIP वापस कराया, तो ऑलमोस्ट बुक वैल्यू आप चेक कर सकते हैं कितनी होगी, 700 odd crores की आई थिंक और भी प्रॉफिट्स ऐड हो रहे हैं. सो अगेन नॉट अ रिकमेंडेशन टू बाय और सेल अ पर्टिकुलर स्टॉक, जस्ट एज एन एग्जांपल कि ये सेक्टर अच्छा कर रहा है इस टाइम पे, राइट. सिमिलरली स्मॉल फाइनेंस बैंक्स में आप आके देखेंगे तो तीनों बैंक्स का परफॉर्मेंस देखते हैं. AU का मल्टीपल हमेशा हाई रहता है एंड थोड़ा सा एक्सपेंसिव स्टॉक रहता है, बट लाइक्स ऑफ उज्जीवन, इक्विटास, तो यहाँ पे आप देखते हैं तो इक्विटास की भी 32% ऑलमोस्ट एडवांसेज में ग्रोथ आई है, फिर एज अगर आप उज्जीवन की बात करते हैं तो उनका भी ऑलमोस्ट 27% के आसपास ग्रॉस लोन बुक के अंदर ग्रोथ आई है. एंड यहाँ पे प्राइस टू बुक अभी भी 3x के बिलो चल रहा है दोनों का, राइट. एंड दोनों बोथ द बैंक्स आर गेटिंग गुड रिटर्न ऑन इक्विटी एज वेल. सो दिस इज अनदर स्पेक्ट्रम ऑफ द मार्केट और एरिया ऑफ द मार्केट जहाँ पे इस टाइम पे फाइनेंशियल्स एंड बैंक्स के अंदर वन कैन स्टार्ट लुकिंग फॉर सम ऑफ दीज बिजनेसेस, या फिर अगर आपको इंडिपेंडेंटली इन बिजनेसेस को एनालाइज करना है, बिकॉज आर पर्पज इज टू टेल यू अबाउट द सेक्टर्स. बिजनेसेस आपको इंडिपेंडेंटली खुद ढूंढने पड़ेंगे इन सेक्टर्स के अंदर. सो दिस इज द थर्ड सेक्टर विच माइट पोटेंशियली डू वेल, एंड दिस इज वन ऑफ द सेक्टर्स जहाँ पे अगेन इफ द लार्ज कैप्स आर डूइंग वेल, सो अगेन सेक्टर के जो मल्टीपल्स एंड दे इटसेल्फ गेट रीरेटेड. फिर हम चलते हैं फोर्थ सेक्टर की तरफ जो थोड़ा सा बैंकिंग एंड फाइनेंस से हटके है. जस्ट बिफोर गोइंग फॉरवर्ड, तो जब हम फोर्थ थीम की बात करने से पहले, इफ यू ऑल्सो वॉन्ट टू लर्न कि हाउ द लैंग्वेज ऑफ अकाउंटिंग वर्क्स, क्योंकि आज की बुल मार्केट के अंदर इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अ रिटेल इन्वेस्टर टू लर्न अबाउट द लैंग्वेज ऑफ अकाउंटिंग, बिकॉज फॉरेंसिक एनालिसिस आप तभी कर पाएंगे. सेकेंड की इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम एक रिटेल इन्वेस्टर क्या फेस करता है, डैट वी डोंट नो हाउ टू स्क्रीन फॉर स्टॉक्स. थर्ड सबसे बड़ी एक प्रॉब्लम एक रिटेल इन्वेस्टर क्या फेस करता है कि हमारे पास एक एग्जिट फ्रेमवर्क ही नहीं होता. हम लोग स्टॉक्स में हमें घुसना तो आता है, बट आफ्टरवर्ड्स वी आर लाइक हम एक चक्रव्यूह में फंस जाते हैं एंड वी डोंट नो हाउ टू एग्जिट स्टॉक्स. एंड फाइनली की लर्निंग डैट ऑल ऑफ यू मस्ट हैव कि आपके पास एक बाइंग का भी फ्रेमवर्क होना चाहिए, कि किसी भी से बात करके या किसी की टिप्स पर अगर आप स्टॉक खरीद रहे हैं तो अगेन इन अ बुल मार्केट यू आर सेटिंग अप योरसेल्फ फॉर फेलियर. एंड फाइनली रिटेल इन्वेस्टर्स के पास एक एसेट एलोकेशन का फ्रेमवर्क और एक फाइनेंशियल प्लानिंग का बिल्कुल भी फ्रेमवर्क नहीं होता. सो ऑल दीज की थिंग्स वी टीच यू इन वन SOIC मेंबरशिप, जहाँ पे हमारा की पर्पज़ क्या है कि एक रिटेल इन्वेस्टर की सारी प्रॉब्लम सॉल्व करें. बिकॉज दिस इज अ बिगनिंग ऑफ द न्यू ईयर डैट इज 2024, यू कैन यूज अ कूपन कोड SOIC2024 टू गेट एन एक्सक्लूसिव डिस्काउंट फॉर दोज हु आर जस्ट वॉचिंग दिस वीडियो फॉर द नेक्स्ट 48 hours. लिंक फॉर द मेंबरशिप इज देयर इन द डिस्क्रिप्शन बिलो. नाउ कमिंग बैक टू द फोर्थ थीम, तो जब हम फोर्थ थीम की बात करते हैं तो ये थोड़े से एसिड हैवी बिजनेसिस की थीम है. एसिड हैवी बिजनेसिस क्या है, तो यहाँ पे तीन सेक्टर्स आते हैं जो एसेट हैवी के अंदर है. एक हॉस्पिटल सेक्टर है, एक होटल सेक्टर है और एक रियल एस्टेट सेक्टर है. तो तीनों सेक्टर्स के अंदर इस टाइम पे टेलविंड्स हैं एंड तीनों सेक्टर्स में डिफरेंट टेलविंड्स हैं. तो पहले हम हॉस्पिटल सेक्टर की बात करते हैं, तो हॉस्पिटल सेक्टर में क्या टेलविंड चल रही है कि धीरे धीरे करके इंडिया के जो लार्ज प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं दे आर कंसोलिडेटिंग द मार्केट शेयर. चाहे वो मैक्स हॉस्पिटल हो इतना केपेक्स करे, चाहे वो नारायणा विद्यालय हो जिन्होंने मल्टी ईयर केपेक्स प्लान अनाउंस करा है, चाहे वो रेनबो हॉस्पिटल हो चाइल्ड केयर हॉस्पिटल इंडस्ट्री में जहाँ पे उन्होंने काफ़ी केपेक्स अनाउंस करा है, चाहे वो कुवाई मेडिकल केयर क्यों ना हो, चाहे जो एक रीजनल हॉस्पिटल है राइट वहाँ पे उनके पास एक मेडिकल कॉलेज भी है. सो इंडिया की जो हेल्थ केयर या हॉस्पिटल मार्केट है तो यहाँ पे प्राइवेट इक्विटी इंटरेस्ट भी बहुत है एंड यू सी कि पेंशन फंड्स भी यहाँ पे बहुत सारे इन्वेस्टेड हैं, क्योंकि दिस सेक्टर हैज 15-20% रिटर्न ऑन इक्विटी एंड अपार्ट फ्रॉम दैट इस सेक्टर के ना मल्टी ईयर ग्रोथ रनवे भी है. बट अगेन वैल्यूएशन चेक आपको इंडिपेंडेंटली लेना पड़ेगा, बट एज अ सेक्टर दिस थीम कैन प्रॉबेबली डू वेल ओवर द नेक्स्ट मल्टीपल ईयर्स. बट यू मस्ट अंडरस्टैंड इज दैट वैल्यूएशन चेक आपको टाइम टू टाइम डिफरेंट स्टॉक्स के यहाँ पे लेने पड़ेंगे. तो सेकंड सेक्टर की जब हम बात करते हैं होटल सेक्टर एसेट हैवी थीम में, तो बहुत सालों से इंडिया के अंदर होटल्स की सप्लाई ऐड नहीं हुई. तो रूम्स की जब सप्लाई ऐड नहीं हुई तो उससे क्या है कि डिमांड तो बढ़ते जा रही है क्योंकि इकॉनमी अच्छा कर रही है. तो फाइनली होटल सेक्टर हैज गॉट द प्राइसिंग पावर बैक, इवन दो ये लास्ट 1 year से ट्रेंड चल रहा है, बट होटल सेक्टर की भी जो साइकिल्स है दीज आर लॉन्ग डेटेड इन नेचर. माने होटल सेक्टर का भी 4-5 साल का अच्छे समय आता है एंड 4-5 साल का खराब समय आता है. रियल एस्टेट भी एकदम सेम सेक्टर है जहां पे 4-5 years की गुड साइकिल होती है, फिर 10-12 years की बैड साइकिल होती है. तो होटल सेक्टर में भी इस टाइम पे गुड साइकिल का ट्रेंड चल रहा है. देर आर मल्टीपल लिस्टेड होटल्स लाइक चाहे ओबरॉय हो चाहे वो लेमन ट्री हो, वेयर देर लाइक एवरेज रेवेन्यू पर रूम इज गोइंग अप. चाहे आप ओबरॉय का एग्जांपल है जो EIH करके है, केपेक्स भी वहाँ पे इस टाइम पे नहीं है. समी होटल्स करके भी है वेयर बहुत सारा डेट है विच इज डीलेवरेजिंग जस्ट पोस्ट IPO. सो दीज आर वन ऑफ द थीम्स जहाँ पे आप बिजनेसेस ढूंढ सकते हैं इंडिपेंडेंटली. फिर रियल एस्टेट की बात करते हैं, तो रियल एस्टेट में इस टाइम पे क्या हो रहा है कि अ लॉट ऑफ रियल एस्टेट कंपनीज आर रिपोर्टिंग वेरी स्ट्रॉन्ग प्री सेल्स ग्रोथ। प्री सेल्स ग्रोथ क्या होती है कि आप जब रियल एस्टेट के अंदर एक घर, एक फ्लैट आप बुकिंग अमाउंट एडवांस रिसीव करते हैं, तो आप उसको प्री सेल्स में दिखाते हैं, क्योंकि आप सेल्स में उसको तभी दिखाएंगे जब द प्रोजेक्ट हैज़ बीन डिलीवर्ड। तो प्री सेल्स में अगर आप देखेंगे तो चाहे वो सुबह हो एग्जाम्पल में, चाहे वो कुल्टे पाटिल हो, चाहे वो प्रेस्टीज का एग्जाम्पल हो, चाहे वो मैराथन का एग्जाम्पल हो, चाहे वो इंडस्ट्री के अंदर डीएलएफ का एग्जाम्पल हो या मल्टीपल प्लेयर्स का एग्जाम्पल हो, ऑल द रियल एस्टेट प्लेयर्स आर शोइंग 40-50-60-70% टाइप प्री सेल्स ग्रोथ नंबर्स, बिकॉज ऑर्गेनाइज बिल्डर्स आर ट्रेकिंग अवे मार्केट शेयर फ्रॉम द अनऑर्गेनाइज वन, क्योंकि अनऑर्गेनाइज वालों पास लिक्विडिटी चैलेंज है टू कंप्लीट द प्रोजेक्ट्स। सो दिस इज वन ऑफ द सेक्टर्स विच सीम्स टू बी की एक लॉन्ग डेटेड साइकिल के अंदर है। यहाँ पे और भी मल्टीपल बिजनेसेस हैं, जैसे आशियाना हाउसिंग है दिल्ली एनसीआर रीजन के अंदर। सो देर आर मल्टीपल लोकल बिल्डर्स एंड मल्टीपल नेशनल लेवल बिल्डर्स। सो प्रॉब्ली लुकिंग एट वन और टू नेशनल बिल्डर्स एंड वन और टू लोकल बिल्डर्स इन मुंबई और इधर बैंगलोर, दैट इज वेयर द टेलविंड्स आर द स्ट्रॉन्गेस्ट। सो दिस सेक्टर इज ऑल्सो डूइंग वेल। तो नेक्स्ट थीम कैपिटल गुड्स की थीम है। तो कैपिटल गुड्स की थीम हैज बीन डूइंग वेल ओवर द लास्ट फ्यू ईयर्स एज वेल, बट कैपिटल गुड की थीम्स में नाउ इज नॉट द टाइम कि सिर्फ आप सेक्टर्स को दे सकते हैं, आपको बॉटम्स अप बहुत स्पेसिफिक होना पड़ेगा। जैसे कुछ बिजनेसेस हैं जहाँ पे अभी लॉस मेकिंग जॉइंट वेंचर्स हैं, अभी वो लॉस मेकिंग जॉइंट वेंचर्स बंद हो रहे हैं मल्टीपल्स 15-16 टाइम्स की पी रेशियो पे, एंड वहाँ पे अगर ऐसी लॉस मेकिंग जॉइंट वेंचर्स बंद होते हैं तो एक्चुअली में अर्निंग्स विल ग्रो मल्टीफोल्ड्स। फिर ऐसे भी बिजनेसेस हैं अभी कैपिटल गुड्स के अंदर, फॉर एग्जाम्पल आई थिंक हैदराबाद बेस्ड वन और टू ऑफ द कंपनीज जहाँ पे 15-16 बिजनेस डिवीजन हैं, वहाँ पे अभी बिजनेस डिवीजन भी इस टाइम पे बंद होते जा रहे हैं, एंड जो एग्जिस्टिंग बिजनेस डिवीजन है विच आर मच हायर मार्जिन इन नेचर एंड मल्टीपल के 18-19 टाइम पी रेशियो है। फिर और भी ऐसे कैपिटल गुड बिजनेसेस हैं स्टील ट्यूब्स के अंदर, जैसे एग्जांपल एक सिंपल अगेन हो सकता है अभी रनअप आया हो, आई डोंट नो व्हाई द रनअप हैज हैपेंड, जैसे सूर्य रोशनी का एक एग्जांपल है, एंड ओवर देयर एज वेल पीछे 16-17 पी पे था एंड ग्रोथ वाज लाइक 15-20% टाइप्स, बट अभी शायद से आई थिंक 20-21 टाइम्स मल्टीपल पे हो गए। तो कैपिटल गुड इज अ सेक्टर विच पॉसिबली और प्रोबेबली कैन डू वेल, बट वन मस्ट बी रिस्पेक्टफुल ऑफ मल्टीपल्स ओवर इट, बिकॉज रिसेंटली मल्टीपल्स की काफ़ी री रेटिंग हुई है। बट कैपिटल गुड्स नॉट जस्ट फॉर बेसिकली केपेक्स, तो केपेक्स में भी डिफरेंट थीम्स है, जैसे विंड एनर्जी की बात करेंगे तो वहाँ पे क्रेन कंपनीज हैं जो इस टाइम पे प्रॉक्सीज बनी हुई हैं। इवन दो विंड मिल कंपनीज आर डूइंग वेल जो विंड टर्बाइंस बना रही है, बट वहाँ पे एक रिस्क रहता है कि वारंटी का एक बहुत चैलेंज रहता है, प्रोडक्ट रिकॉल्स का बहुत चैलेंज रहता है। पर अगर आपको पता है कि दिस डैट विंड एनर्जी का सेक्टर अच्छा कर सकता है, तो देर आर प्रॉक्सीज विच आर अवेलेबल, वो पूरे कास्टिंग बनाते हैं उनके, बेसिकली जो पीछे पूरा शेल और कास्टिंग होती है अगर आप एक विंड मिल का देखेंगे, सो देर आर दोज कंपनीज एज वेल, बहुत अल्ट्रा माइक्रो कैप स्पेस में, इसलिए बहुत ज़्यादा डिटेल में हम बात नहीं कर सकते, बट दैट इज़ वेयर अ लॉट ऑफ इंटरेस्टिंग थिंग्स हैपन, बिकॉज फॉर 30-40% ग्रोथ रेट्स आ रहे हैं, क्रेन्स में भी आ रहे हैं एंड इन सम ऑफ दीज कास्टिंग मैन्युफैक्चरर्स एज वेल। तो ये भी एक थीम है। फिर पावर सेक्टर की भी थीम है, पावर सेक्टर में भी इस टाइम पे ट्रांसफॉर्मर्स की थीम अच्छी है, बट बहुत ज़्यादा रनअप आ चुका है ट्रांसफॉर्मर की थीम में, तो इस वजह से बहुत डिटेल में डिस्कशन करने का इतना आई थिंक कोई पॉइंट नहीं रहेगा। बट हमने ग्रीन एनर्जी की वीडियो करी थी, जो आप पूरी वीडियो देख सकते हैं, जहाँ पे हमने विंड एनर्जी के प्रॉक्सीज एंड ट्रांसफॉर्मर के प्रॉक्सीज सारे डिस्कस करे थे, बट रिसेंटली इन सब में काफ़ी रनअप आए, इसलिए हम वीडियो में बहुत डिटेल में डिस्कशन नहीं कर रहे। बट दिस इज वन ऑफ द थीम्स जो कैपिटल गुड्स के अंदर, इफ़ यू आर एबल टू फाइंड कंपनीज बिटवीन 10-15 टाइम्स अर्निंग्स अभी भी मिल रही है एक्चुअली में, तो अगेन इट विल बिकम वेरी वेरी इंटरेस्टिंग एज अ थीम। सो दिस इज द लाइक ऑलमोस्ट द सेकेंड लास्ट थीम। अब हम लास्ट 2-3 थीम्स की बात करते हैं, तो एक तो वेल्थ मैनेजमेंट कंपनीज की बात करते हैं। तो इंडिया के अंदर जो एब्सोल्यूट वेल्थ बाय इंडियंस है, तो दैट विल गो अप फ्रॉम $1 trillion टू ऑलमोस्ट $2 trillion इन द नेक्स्ट 5 years। तो नेक्स्ट 5 years के अंदर इंडिया का जो वेल्थ थ्रेशोल्ड है विद द रिच फैमिलीज, दैट विल गो अप फ्रॉम $1 trillion टू ऑलमोस्ट $2 trillion, जो UHNIs और HNIs है। एंड इंडिया के अंदर आप देखते हैं तो एक्सपेक्टेड केगर ऑफ UHNIs एंड HNIs 13-14% के आसपास है। तो अगर वेल्थ इंडिया के अंदर बढ़ रही है, तो ऑटोमेटिकली अगर आप अब्रॉड भी देखते हैं, तो देर आर कंपनीज लाइक ब्लैक रॉक हो गई, या फिर आई थिंक आप अपोलो का भी एक एग्जाम्पल हो गया। सो ऑल दीज कंपनीज हिस्टोरिकली हैव डन रियली वेल इन US, बिकॉज जैसी वेल्थ पिरामिड फैमिलीज क्लाइम करती हैं, दे ऑलवेज लुक फॉर वेल्थ मैनेजर्स। तो इंडिया के अंदर जो वेल्थ मैनेजमेंट का लिस्टेड स्पेस है, चाहे वो 361 हो या नुवामा का एग्जाम्पल हो, सो ऑल दीज कंपनीज कुड हैव लाइक अ वेरी मल्टी ईयर रन इन फ्रंट ऑफ देम। बट हो सकता है कि टाइमली करेक्शंस भी हो, बिकॉज दीज आर मार्केट लिंक्ड इन नेचर, तो आपको उस चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा। एंड इन सारे प्लेटफॉर्म्स के साथ जो कनेक्टेड है, चाहे वो कमोडिटी एक्सचेंजेस हो, चाहे वो ई सिग्नेचर प्लेटफॉर्म्स हो या पैन वेरिफिकेशन प्लेटफॉर्म्स हो, तो वहाँ पे भी टेलमेंट्स काफ़ी होंगे, क्योंकि जैसे जैसे इंडिया का फाइनेंशलाइजेशन हो रहा है, जैसे जैसे इंडिया का डिजिटाइजेशन हो रहा है, सो दीज टाइप ऑफ बिजनेसेस टेंड टू बेनिफिट, चाहे वो पैन वेरिफिकेशन के अंदर क्यों ना हो, क्योंकि वहाँ पे आपको KYC जो रिकॉर्ड्स हैं वो मेंटेन करके रखने हैं. सो दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ द टाइप ऑफ बिजनेसेस दैट वी हैव बीन ऑल्सो स्टडिंग, एंड दीज आर द टाइप्स ऑफ बिजनेसेस विच पोटेंशली प्रॉब्ली माइट डू वेल. फिर अगर हम एक फाइनली फार्मा और केमिकल सेक्टर की बात करें, तो फार्मा सेक्टर में इस टाइम पे दिख रहा है कि बहुत स्ट्रांग रिकवरी आ रही है, चाहे वो API कंपनीज हो, चाहे वो पेटेंटेड CDMO कंपनीज हो. जैसे हमने इस चैनल पे आई थिंक पहले न्यूलैंड का भी एक भाई बिजनेस डिस्कशन करा था पास्ट में, तो वहाँ पे एक्चुअली में अगर आप जाके उस डिस्कशन को वापस पूरा देखते हैं, तो यू विल सी कि मार्जिन्स हैव एक्चुअली एंडेड अप एक्सपेंडिंग, राइट. सो डोमेस्टिक फार्मा वाले भी अच्छा कर रहे हैं, सम ऑफ द फार्मा एक्सपोर्टर्स हैव अगेन स्टार्टेड डूइंग वेल, बट अगेन एक सेक्टर है जो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड सेक्टर है, तो एक रिटेल इन्वेस्टर को ध्यान से देखना चाहिए. बट बॉटम्स अप इफ यू आर फॉलोइंग लाइक गुड पीपल, जैसे अगर आप ट्विटर में भी अनसीन वैल्यू टाइप या फिर आदित्य खेमका सर को फॉलो कर रहे हैं, सो यू विल सी कि लॉट ऑफ बिजनेसेस इन दिस सेक्टर सीम टू बी सिटिंग ऑन वेरी गुड ट्रिगर्स फॉर ऑपरेटिंग लेवरेज. एंड फाइनली केमिकल्स में इस टाइम पे क्या चल रहा है कि इस टाइम पे डाउन साइकिल परसिस्ट कर रही है, तो डाउन साइकिल में चाइना इस टाइम पे भी केमिकल डंप कर रहा है, तो ये कमोडिटीज़ के लिए थीम रहेगा कि जहाँ पर चाइना में ओवर कैपेसिटी हो रही है वहाँ पे डंपिंग हो रही है. बट केमिकल्स में भी देर आर बिजनेसेस जिनका हो सकता है एक दो क्वार्टर और ख़राब हो, बट देर आर बिजनेसेस जो बेरियम के अंदर मार्केट लीडर है, कोई बेंजीन के अंदर मार्केट लीडर है, कोई पिगमेंट्स के अंदर मार्केट लीडर है, कोई GLE इक्विपमेंट में मार्केट लीडर है, तो इन सबको आपको पढ़ते रहना चाहिए, क्योंकि कभी भी यहाँ पे रिकवरी आने के चांसेस बन सकते हैं, क्योंकि बेस बहुत फेवरेबल हो रहा है. जैसे जैसे ख़राब रिजल्ट आते हैं, तो क्या होता है कि आपका पिछले साल अगर पूरे साल खराब रिजल्ट आए, तो अगले साल आपके लिए पिछले साल का बेस बड़ा फेवरेबल हो जाता है. तो यहाँ पे भी धीरे धीरे वैल्यूएशन रीजनेबल होते जा रही है, एंड इस सेक्टर में भी आपको थोड़ी मेहनत करनी चाहिए, क्योंकि मल्टीपल प्लेयर्स है, चाहे वो बीच में विष्णु केमिकल्स का एग्जाम्पल हो, सुदर्शन का हो, आलती इंडस्ट्रीज़ का हो, GMM फॉडलर अगर किसी ने पढ़ा हो, तो ऑल दीज प्लेयर्स आर ऑल्सो देर इन द केमिकल सेक्टर, राइट. एंड फाइनली अगर हम कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी सेक्टर की आउटलुक की तरफ देखें, तो कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी में क्या है कि इस टाइम पर अगर आप फ्रिजेस विजेस का देखेंगे, तो यहाँ पे इतना स्पेंड नहीं हो रहा, बट कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी में जहाँ पे इस टाइम पे कंज्यूमर स्पेंड बहुत कर रहे हैं, तो इवन दो थोड़ा कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी से हट के, बट एयरलाइन सेक्टर में सप्लाई साइड बड़ी कंसोलिडेशन हो गई है, फिर फूड डिलीवरी सेक्टर में इस टाइम पे बहुत कंसोलिडेशन हो गई, अब दो ही लोग रह गए हैं इस टाइम पे, तो डैट इज़ ऑल्सो वन ऑफ द सेक्टर्स जहाँ पे ये हो सकता है कि ग्रोथ रेट्स कंटिन्यू सरप्राइजिंग एंड मार्जिन माइट ऑल्सो सरप्राइज ऑन द अपसाइड, क्योंकि फूड डिलीवरी सेक्टर में तो कंपनी ने रिटेल बिजनेस भी स्टार्ट कर लिया, विच इज़ ग्रोइंग एट अ वेरी फास्ट पेस. सो दीज आर सम ऑफ द थीम्स दैट वी आर स्टडिंग, एंड मेटल्स एंड माइनिंग्स में भी सम ऑफ द आयरन ओर माइनर्स आर गेटिंग अप्रूवल्स फ्रॉम द मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, जिसकी वजह से इनकी स्टीप जंप्स इन कैपेसिटीज आ रही है. तो हमने आई थिंक इस चैनल पे फरवरी 2023 में आई थिंक GPIL का भी एक बार एनालिसिस करा था, वो एनालिसिस भी देख सकते हैं, जहाँ पे उनके पास मल्टीपल अप्रूवल्स आई थिंक नेक्स्ट 2-3 ईयर्स में आने हैं. बट अगेन दिस इज़ अ वॉलेटाइल सेक्टर, तो आपको वॉलेटिलिटी देख के चलना पड़ेगा. बट माइनिंग इक्विपमेंट की भी कंपनीज हैं यहाँ पे, तो माइनिंग इक्विपमेंट की भी कंपनीज हैं विच आर डूइंग एक्सट्रीमली वेल. सो दिस इज़ हाउ वी आर लुकिंग एट 2024 और मल्टीपल थीम्स. हम लोग अपॉर्चुनिटीज इस टाइम पे ऐसे ढूंढ रहे हैं. आप लोग भी मेरे को बताइए कि आप कौन से सेक्टर्स पढ़ रहे हैं इन द कॉमेंट सेक्शन बिलो, एंड इन सारे सेक्टर्स में से आपको कौन सा सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग सेक्टर लगा. डू लेट अस नो इन द कॉमेंट्स बिलो कि अब अगला बिजनेस एनालिसिस कौन से बिजनेस पे चाहेंगे. एंड इसके साथ साथ हम लोग एक न्यू सीरीज लेके आ रहे हैं, जिसमें हम 2-3 वीडियोस करेंगे, एंड वी विल बी रिव्यूइंग ऑल द बिजनेसेस दैट वी हैव डिस्कस्ड ऑन द चैनल इन द लास्ट 2-3 इयर्स, क्योंकि हम एक डिस्पैशनेट ऑब्जेक्टिव व्यू करेंगे कि ये थीसिस एंटी थीसिस पॉइंट था, इस बिजनेस में ऐसा हुआ और इस बिजनेस में ऐसा हुआ. थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस. होप टू सी यू मोर ऑफन इन 2024, एंड विशिंग यू एंड योर फैमिली अ हैप्पी न्यू ईयर. थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस. अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा, डू मेक श्योर डैट यू सब्सक्राइब टू द चैनल, एंड सी यू इन द नेक्स्ट बिजनेस एनालिसिस ऑफ SOIC. जय हिंद.